ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक परिदृश्य में 24वें SCO शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं स्कंद रंजन तायल, पूर्व राजनयिक, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हो रहे 2024 के SCO शिखर सम्मेलन, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा और विमर्श हो रहा है, और भारत के लिहाज से अगर इसके महत्व को देखा जाए तो इसमें अभी तक दो ऐसे इवेंट देखने को मिले। विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय वार्ताएं हुई हैं SCO शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के साथ, और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वक्तव्य को उन्होंने SCO के मंच पर रखा। आज हम कार्यक्रम में इस सम्मेलन पर बात कर रहे हैं एम्बेसडर स्कंद रंजन तायल के साथ। एम्बेसडर तायल, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में।
धन्यवाद।
सबसे पहले जो एक मूल प्रश्न जिससे मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा कि आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को SCO के मंच पर अपने संबोधन में रखा, और उन्होंने कहा कि SCO भारत की विदेश नीति में बहुत अहमियत रखता है। भारत के लिहाज से आपके नजरिए से ये सहयोग संगठन किस तरह से अहमियत रखता है और कैसे भारत रणनीतिक स्तर पर इस सहयोग संगठन को देख रहा है?
भारत ने हमेशा से, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सेंट्रल एशिया पर बहुत अधिक ध्यान दिया है। तो हमारे संबंध बायलेटरल द्विपक्षीय भी हैं पांचों सेंट्रल एशिया रिपब्लिक के साथ, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बहुपक्षीय भी हैं। इस समय जो अस्ताना में समिट हो रही है, क्योंकि भारत में संसद का सदन चल रहा था तो उसको छोड़ के जाना, इलेक्शंस के बाद पहला ही संसद का सदन था, तो इसलिए प्रधानमंत्री इसमें नहीं जा पाए। पर उनका वक्तव्य जो डॉक्टर जयशंकर ने आज पढ़ा, उससे उनमें पता चलता है कि किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन महत्वपूर्ण है और क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे वहां पर उठाए गए, डिस्कस हुए, और कुछ परिणाम उनका ज्वाइंट स्टेटमेंट में निकलेगा। भारत का जो सबसे अधिक इस समय जो महत्व है SCO के लिए, वो मैं समझता हूँ कि मेंबर तो इस समय 9 है, बेलारूसियो भी बन जाएगा, तो 10 मेंबर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। पर जो उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका मैं समझता हूँ कि जो फोकस है वो मध्य एशिया पर है, सेंट्रल एशिया पर है, जो चार देश उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, और इन चारों से भारत के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य आज डॉक्टर जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री ने पढ़ा, उसमें कई चीजों पर अधिक ध्यान आकर्षित किया गया, और जैसा आपने कहा, मैं समझता हूँ कि उस वक्तव्य में बहुत कुछ कहा गया और कुछ इंगित किया गया, कुछ उन्होंने बताया और कम शब्दों में ही बहुत कुछ कहा, और भारत की जो कंसर्न्स हैं, जो खास मुद्दे भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उन सबको इस वक्तव्य में शामिल किया गया है।
जितने भी शिखर सम्मेलन इन बीते वर्षों में हो रहे हैं, विशेष रूप से इन शिखर सम्मेलनों को इस दृष्टि से भी देखा जा रहा है कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, संघर्ष हैं, उसमें किस तरह से इन शिखर सम्मेलनों में शामिल होने वाले सदस्यों का रुख रहता है, क्या कुछ चर्चा या विमर्श इस मामले में होता है। इस संबंध में जैसा कि आपने जिक्र किया डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा रखे गए प्रधानमंत्री के वक्तव्य का, तो इस दृष्टि से भी उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको लेकर भी जो ट्रस्ट डेफिसिट बन गया है, संघर्ष तनाव है, उससे भी दुनिया को आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दृष्टि से देखना होगा।
देखिए, विश्व या SCO के जो सदस्य हैं, वहां की जनता क्या चाहती है? जनता आर्थिक विकास चाहती है, जनता संपन्न होना चाहती है, जनता खुश रहना चाहती है। तो पहले 2020 से, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि पेंडेमिक का इम्पैक्ट रहा, उसके बाद आज हम देखें तो यूक्रेन का कंफ्लिक्ट चल रहा है, गाजा इसराइल लड़ाई चल रही है, तो तनाव बढ़ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री ने कहा। विश्वास की कमी की तरफ प्रधानमंत्री ने ध्यान इंगित किया। बहुत उन्होंने एक खास बात कही कि SCO को एक संस्था के रूप में ये जो प्रिंसिपल्स हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, संप्रभुता, सॉवरेनिटी ऑफ जितने भी देश है सबकी सॉवरेनिटी, और क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, उसको और रीइन्फोर्स करना चाहिए, उसको और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं, और ये देखिए इशारा किसकी तरफ था, जो चीन प्रयत्न कर रहा है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी भारत के ऊपर, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, वो अपना एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को दूसरे देशों की उनके ऊपर कुछ दबाव डाल रहा है। अभी रशिया ने भी यूक्रेन में जिस तरह हमला किया तो वो यूक्रेन की संप्रभुता के ऊपर एक हमला था। तो प्रधानमंत्री ने बिना किसी देश का नाम लिए प्रिंसिपल की बात की कि भाई ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं ये यूनाइटेड नेशंस के भी हैं, एससीओ के भी हैं, पूरी दुनिया इनको मानती है।
जिस नेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की आपने बात की, जो आर्थिक सहयोग या व्यापार है, उस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री ने जैसा कि कहा अपने वक्तव्य के माध्यम से एक स्पष्ट रुख रखा कि आर्थिक तौर पर भी एक संप्रभुता और अखंडता का सम्मान बहुत जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने जो इस मुद्दे को कनेक्टिविटी के संदर्भ में रखा,
जी जी,
तो कनेक्टिविटी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है वो भारत का जो कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है उसके होता हुआ जाता है, और भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वो रेस्पेक्ट नहीं करता है। प्रधानमंत्री ने बिना सीपैक का नाम लिए इसकी तरफ एससीओ का ध्यान आकर्षित किया, और ये भी कहा कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या ट्रांजिट होता है दो देशों के बीच में जिस तरह से ट्रेड जाता है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, उसमें सब देशों के साथ एक साथ व्यवहार करना चाहिए। यह इशारा पाकिस्तान की तरफ था जो हमारा सामान अफगानिस्तान नहीं जाने देता अपने क्षेत्र से, और दूसरा पाकिस्तान ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट जो होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक ये बड़ा फंडामेंटल रूल है वो भी उसने नहीं दिया है। तो बिना किसी देश का नाम लिए प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इन सब चीजों को हाईलाइट किया।
आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के बारे में भी उन्होंने कहा, और किस तरह से अब वक्त है कि एक ठोस निर्णायक प्रतिक्रिया सभी देशों के द्वारा जो क्षेत्रीय सुरक्षा है या आतंकवाद का मुकाबला है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट बातें रखी, तो आप कैसे देखते हैं इन सभी देशों की, मध्य एशियाई देशों की भूमिका को और एससीओ के सदस्य देशों की भूमिका को जो टेररिज्म है उससे निपटने में?
आतंकवाद से एससीओ के अधिकतर सदस्य उसे भुगत रहे हैं और उससे नुकसान हो रहा है। अभी रूस में इतना बड़ा आतंकवादी घटना पिछले महीने हुई, करीब 120 लोग उसमें मारे गए, और ये चीन में भी होता रहता है, भारत में तो होता ही है, ईरान में होता है, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान में भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, और ये सब कहीं कहीं ना कहीं बाहर से इसका फाइनेंसिंग होती है, इसके आर्म्स आते हैं, और इस पर प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में इसकी ओर ध्यान दिलाया। कहीं कहीं आतंकवाद जो अपनी सीमाओं के बाहर से जो ओरिजिनेट हो रहा है उसको अगर नहीं रोका गया तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी, और हमारे संदर्भ में मैं कहूंगा ये इशारा पाकिस्तान की तरफ था।
और इसके अलावा जो दूसरे मुद्दे हैं जैसे पर्यावरण का मुद्दा हुआ और तकनीक का मुद्दा हुआ, इस बारे में भी प्रधानमंत्री ने वक्तव्य में महत्वपूर्ण बातें कही, और खास तौर पर जो भारत के इस मामले में इनिशिएटिव्स हैं, भारत जिस तरह से लीड ले रहा है चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो और भी तमाम बातें, वो कैसे दूसरे देशों को भारत के इन कदमों से प्रभावित करती हैं, किस तरह से भारत को महत्वपूर्ण कह सकें कि इन मामलों में प्रगति के देश के रूप में प्रस्तुत करती हैं।
हमारे प्रधानमंत्री जब किसी समस्या को उठाते हैं, विश्व के किसी भी फोरम में रखते हैं, तो उसके साथ उसके कुछ समाधान भी बताने का प्रयत्न करते हैं, और ये बताते हैं कि भारत ने उस दिशा में उस समस्या को सुलझाने के लिए क्या किया है। जलवायु परिवर्तन से पूरा विश्व इस समय परेशान है, देख रहा है किस तरह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, किस तरह गर्मी हर जगह पूरे विश्व में नई मापदंड स्थापित किए। भारत एससीओ का प्रेसिडेंट था पिछले वर्ष, तो भारत की प्रेसिडेंसी में एक एमर्जिंग फ्यूअल, जैसे नए फ्यूअल जो है, जैसे हाइड्रोजन हो या सोलर हो, विंड हो, उस पर भारत ने काफी ध्यान दिया है, और भारत के उसमें बड़े अचीवमेंट्स हैं। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो भारत तो अग्रणीय देशों में, उस पर प्रधानमंत्री ने ध्यान दिलाया। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता किस तरह तेजी से एक नए दिशा में जा रही है और किसी को कुछ पता नहीं है कि ये कहाँ तक ले जाएगा, और उसका पूरी मानव जाति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। भारत ने इस पर पहले ही एक नेशनल स्ट्रेटजी बनाई है और जो भी हमारा सोच है वो प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सब देशों के साथ उसको साझा करने के लिए तैयार हैं। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना है और ऐसा निश्चित करना है कि उससे मानव जाति को पूरा कोई नुकसान ना हो, चाहे वो रोजगार की दिशा में हो, चाहे वो क्लोनिंग की दिशा में हो, चाहे वो और किसी दिशा में हो, तो सब देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा और उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक महत्वपूर्ण रोल होगा।
जैसा कि आपने कहा कि 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस शंघाई कॉरपोरेशन एससीओ के साथ जुड़ रहा है, और इस तरह से हम कैसे देख सकते हैं कि जिस तरह किसी भी संगठन का विस्तार होता है तो उसमें सदस्य देशों की संख्या बढ़ने के साथ साथ एक तरह से कहें कि मत की भिन्नता भी बढ़ती है और अलग अलग मतों का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। इस दृष्टि से अगर एससीओ का विस्तार होता है और भी आने वाले समय में जो पर्यवेक्षक देश है उनको भी शामिल किया जाता है, तो इससे कैसे अलग अलग मतों का रिप्रेजेंटेशन होने से आप इस सहयोग संगठन की और बढ़ती भूमिका को आप देख पाते हैं?
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पहले 6 मेंबर थे, फिर भारत और पाकिस्तान उसमें आए, 8 हुए, फिर ईरान इस समय 9 है, बेलोरशिया 10, पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो है चाइना में है। तो ऐसा माना जाता है कि इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सब मेंबर तो बराबर हैं, पर शायद रशिया और चाइना का इसमें थोड़ा सा अधिक महत्वपूर्ण है। और ये दोनों देश इस समय वेस्ट से और अमेरिका से इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। और अगर हम देखें तो पिछले वर्ष ईरान इस संस्था में शामिल हुआ, बेलोरशिया भी इस संस्था में शामिल हुआ है, और यूक्रेन रशिया युद्ध हो रहा है उसमें बेलोरशिया रशिया के साथ है। तो कहीं ना कहीं कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो लोग पर्यवेक्षक हैं या जो लोग एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो सोचते हैं कि शायद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जो अमेरिका को या पाश्चात्य जगत को या डेमोक्रेटिक जगत को कहीं चैलेंज करने का प्रयत्न करता है। पर मेरा ये सोच नहीं है, क्योंकि भारत का हर देश से अच्छी मित्रता है। और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस देश है, अगर उनको 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उनका अमेरिका से या पाश्चात्य देशों से कोई उनके भेदभाव नहीं है, वो हर देश की तरफ मित्रता का भाव रखते हैं। तो भारत और 4 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स मिलकर मैं समझता हूं कि ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशन रहे और सब मेंबर देशों की जो भी कलेक्टिव सोच है उसको वो दर्शित करे, और जितने सदस्य हैं सबके पॉपुलेशन जो है, जब लोग हैं वो अपना आर्थिक विकास चाहते हैं उसकी तरफ अधिक ध्यान दें, और जो उस आर्थिक विकास में जो जो खतरे आने वाले हैं, सबसे बड़ा खतरा उसका टेररिज्म का है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने भी ध्यान दिलाया, और दूसरा खतरा है कि कोई भी देश चाहे जितना ताकतवर हो वो किसी छोटे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कोई चोट ना पहुंचाए। तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक फोकस रखेगा, सब देशों का हित साथ में लेकर ये संस्था आगे बढ़ेगी।
जी, और संक्षेप में एक और टिप्पणी मैं आपकी चाहूंगा, क्योंकि जितने भी अभी एससीओ के सदस्य हैं, ये एक स्पष्ट सच्चाई है कि जो जियोपॉलिटिकल भू राजनीतिक जो जटिलताएं हैं वो जरूर हैं आपसी, लेकिन जब एक मंच पर अगर ये देश आते हैं तो क्या जो भू राजनीतिक जटिलताएं हैं उनको बैलेंस करने में इस सहयोग संगठन की भूमिका हो सकती है इस समिट के माध्यम से?
देखिए, भूमिका तो हो सकती है और स्टेटमेंट्स में काफी कुछ कहा जाता है, पर रियलिटी देखें तो बहुत सारे देश जो भी संयुक्त कम्युनिके होगा उसमें जो कहा जाएगा शायद उसको फॉलो पूरा नहीं कर पाते हैं। पर जो सही है वो कहना चाहिए, बार बार कहना चाहिए।
बिल्कुल,
जो देश उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं उन पर दबाव पड़ना चाहिए, और इस तरह की मीटिंग से उन पर दबाव पड़ता है कि वो उस रास्ते पर चलें जिस पर उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए हैं, जिसको वो खुद पब्लिकली मानते हैं, और बायलैटरल मीटिंग जो होती है वो बहुत इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर की मीटिंग रशिया के विदेश मंत्री श्री सर्जी लावरोव और चाइना के विदेश मंत्री श्री वांग यी से हुई, मैं समझता हूँ उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा हमारे बायलेटरल रिलेशनशिप इन दोनों देशों के साथ आगे ले जाने में।
एम्बेसडर स्कंद रंजन तयाल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसईओ समिट पर बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे, हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे वैश्विक परिदृश्य में 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे स्कंद रंजन तायल, पूर्व राजनयिक, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।